श्री प्रभुपाद की श्री नित्यानंद प्रभु की जय। राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन बल्लव गिरिवर जन बल्लव गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्लव गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावन चारी यमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय मा सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की किसी नित्यानंद प्रभु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। शब्दों का परिचय इस प्रकार है। देहम मानसम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्याम सह अवासीत् पत्न्या कति भगवन् प्रभोः। देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः कतिवस्नानि वृष्णिभिः यदुपूर्यं सह वत्सि पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः देहं मानसमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपूर्यं सह वत्सि पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः। देहं मानसमाश्रित्य देह मानसमाश्रित्य
Yeah.
शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, देहम शरीर, मानसम मनुष्य की तरह, आश्रित्य स्वीकार करते हैं, कति वर्षाणी कितने वर्षों तक, वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वालों के साथ में, वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले के साथ में, यदुपर्याम यदुओं के आवास स्थानों में, द्वारका में, सह साथ अवाप्सित भगवान रहे, पत्न्यहा पत्निया कति कितने, भगवन अभवन हुई प्रभो भगवान के। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अवैतरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे विष्णु के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनके कितनी पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्ष तक रहे। भक्ति वेदांत तात्पर्य, अनेक स्थलों पर भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। यहाँ पर इसी भाव को मानसम आश्रित्य द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात को सूचक है कि वे मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं। सर्वत्र की पुष्टि हुई है कि कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप मनुष्य जैसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानुतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपिते नमः। संकर्षण कारण तुषायी गर्भोदसायी च पयोदिशायी शेषस्य जस्यां सह सकल सनित्यानन्दाक्षर रामं शरणं ममास्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। भागवत कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है और श्री नित्यानंद प्रभु और साथ साथ में उपस्थित सारे वैष्णवों को चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत और मिथुन चरित्र के कुतवा करने जा रहा हूँ। आज अत्यंत परम पावन दिवस है क्योंकि भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि है और जन्मदिन में वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं भगवान। तो हम सबको आज प्रार्थना करना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर कि उनकी कृपा हम सबके ऊपर बरसे और हम लोग श्री कृष्ण की सेवा कर सके। श्रीमद् भागवतम की जो मुख्य विषय है इन कथाओं को बताना था सुखदेव गोस्वामी को, वो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दसवें स्कंद में। प्रथम स्कंद से लेके नौवें स्कंद तक अध्ययन करने के बाद आज दसवें स्कंद के प्रथम अध्याय के 11 नंबर श्लोक, इन श्लोकों में ये सारे श्लोका अभी जो चल रहा है ये परीक्षित महाराज जी के द्वारा बोला गया है। इन श्लोकों में प्रश्न है, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि किन किन विषयों के बारे में उन्हें वे सुनना चाहते हैं। तो कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं 10 नंबर श्लोक तक। आज के श्लोक में वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वो मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं और वे वृष्णि वंशजों के साथ कितना दिन रहते हैं या कितना वर्षों तक रहते हैं और उनके कितने पत्नियां थे और द्वारका में वो कितना दिन रुके। ऐसे अनेकों प्रश्नों को परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार जो पहला शब्द है देहम मानुष आश्रित्य, ये शब्द चर्चा का विषय है। हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद जो है पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे और उनके जितनी तात्पर्य है वो हमेशा ये जो मायावादी और खास करके भौतिकवादी इन लोगों को इंगित करते हुए वो लिखते हैं। इसलिए उन और उसमें हरेक श्लोक के द्वारा वो साबित करते हैं कि कृष्ण भक्ति ही वेदों का सार है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को भक्ति वेदांत तात्पर्य या भक्ति वेदांत पर्पोस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज भी श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में भगवान की साकार स्वरूप को प्रमाण करने के लिए प्रयास किए हैं। अब देखते हैं देहम मानुष आश्रितम, परीक्षित महाराज इस शब्द को यूज करते हैं पूछते समय कि भगवान कितना दिन वृष्णों के साथ रुके, कितना साल रुके और उनके कितना पत्नियां थे और वो द्वारका में कितना दिन रुके। ये सब प्रश्न पूछने से पहले एक शब्द कहते हैं कि वो पहले मनुष्य की जैसा शरीर लेके वो रुके हैं, ऐसा परीक्षित महाराज पूछते हैं। परीक्षित महाराज ऐसा पूछने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का हमारे जैसा एक भौतिक शरीर है, मनुष्यों जैसा ऐसा नहीं है। क्योंकि आप कुछ भक्त सुने भी रहेंगे कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, और उस व्याख्या में वो लोग कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो दिखाई पड़ने वाला कृष्ण है उसने नहीं दिया, कृष्ण के अंदर, कृष्ण के हृदय में निवास करने वाला ब्रह्म और निराकार वो इस ज्ञान को देते हैं, इस प्रकार के कुछ लोग व्याख्या करते हैं। और ऐसे अनेकों लोगों को हम लोग जानते हैं जिन लोगों ने शास्त्रों के अनेकों आधारों को सामने रखते हुए वो प्रमाण करने के लिए प्रयास करते हैं कि जो परम ब्रह्म है, जो परम सत्य है, उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। कुछ दिन पहले हम एक सीडी देख रहे थे, एक बहुत बड़े इस्लाम का प्रचारक, उन्होंने भी हमारे बहुत सारे वैदिक शास्त्रों को निकाल निकाल कर उनके मंत्रों को, श्लोकों को, वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जब जो सुप्रीम बींग है वो उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है वो तुरंत ही इस प्रकार के बदमाशों को समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं, जो सुप्रीम लॉर्ड है, जो सुप्रीम बींग है, जो परम सत्य है, वो कोई निराकार स्वरूप नहीं है, वो साकार है। उनका अत्यंत सुंदर शरीर है, देह है, मगर वो हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा हड्डी मांस से बना हुआ नहीं है, हमारे जैसा पंचभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है। इस बात को शिल्प रूपा साबित करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। इस यहाँ पर परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि देह मानसम आश्रित, मनुष्य की तरह शरीर स्वीकार करके, इसका अर्थ यह है कि हमेशा जब भी भगवान आते हैं यहाँ पर, या भगवान जहां कहीं भी रहते हैं, उनका स्वरूप ही मनुष्य जैसा, तो फिर हमें भगवान के स्वरूप जैसा ना कहके भगवान को मनुष्य शरीर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम सब मनुष्यों को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ रहते भौतिक संसार में, और व्यक्ति उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, जल्दी समझ सकता है, जो चीजों को देख रहा है और सुन रहा है। भले ही श्री भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है और उनका जो मूल स्वरूप है वो मनुष्य जैसा ही है, द्विभुज है, और वो वृंदावन में रहते निवास करते हैं, और हम सब मनुष्य उनसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं। तो हम सब उनके अंश होने के नाते उनके रूप को हम धारण किए हैं ऐसा। और जब कभी भी यहाँ पे लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं वो उसी अपना मूल स्वरूप के साथ वो प्रकट होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उन्होंने अनेकों जगहों का कोटेशन इसमें लिखते हैं। परमात्मा नराकृति, ऐसे अनेकों शास्त्रों में, उपनिषदों में भगवान के लिए अलग अलग शब्द व्यवहार किया गया है, और उस शब्द किस लिए व्यवहार किया, उन सारे जो उदाहरणों से, सारे संदर्भों से ये पता लगता है कि जो भगवान का मूल स्वरूप है वो मनुष्य जैसा ही है। यहाँ पर कहते हैं परमात्मा नराकृति बुधा परम ब्रह्म मानुष्य चिन्हधारी, और गोपाल तापन उपनिषद में बताया गया नराकृति परम ब्रह्म कारण मानुषः, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर हिज ओन पर्पस अपीयर्स इन ह्यूमन लाइक फॉर्म ऑल्दो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये सारे शास्त्रीय स्टेटमेंट जो है, भगवान कृष्ण उनका जो मूल स्वरूप है या आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो मनुष्यों की जैसा ही है, इन सारे संदर्भों से हमें पता लगता है। मगर अनेकों जगह हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है ब्रह्म संहिता इत्यादि में भगवान का जो शरीर है वो किससे बनता है, सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, आनंद से, सत चित और आनंद का घन स्वरूप है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, देहम मानसा असम कैनॉट मीन्स दैट कृष्णा इज मेटेरियल बॉडी। इसका अर्थ यह नहीं है भगवान कृष्ण का एक भौतिक शरीर है, वो आध्यात्मिक शरीर या मूल रूप ही ये मनुष्य जैसा है। इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज बताते हैं कि देहम मानस आश्रित्यम। ऐसे और भी अनेकों शास्त्र में इसका प्रमाण हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसी बात को श्रील प्रभुपाद आज हमें समझाना चाहते हैं कि जब कभी भी ऐसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं और वो लोग अगर हमें कन्विंस करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से उन सारे शास्त्रों से पता रहना चाहिए कि भगवान का साकार स्वरूप है भगवान, और मनुष्यों के जैसा नराकृति है, वो निराकार नहीं है। मूल रूप से यही आज के भागवतम श्लोक में प्रोपा कहते हैं, और जो भी रहेगा कल लोकाध्यक्ष क्लास से उन्होंने फिर से इसके ऊपर विशद रूप से वो चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से आज भगवान नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस है, इसीलिए और ये भी हम सभी कई भक्त आशा भी किए रहेंगे कि नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को चरित्रों को सुनने के लिए, और हमेशा हम लोग इन लीलाओं को चरित्रों को हर बार सुनते आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे प्रवचनों में भी सुनते हैं। फिर भी भगवान की लीलाएं अद्भुत होते हैं और वो हमेशा नवीन नया लगते हैं सुनने पर। जो प्योर डिवोटिस होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भले ही कितनी बार भी सुने, बार बार इन कथाओं को लीलाओं को सुनने के लिए वो इच्छुक रहते हैं और वो इंतजार करते रहते हैं कि कब सुने। तो चलिए हम लोग आज नित्यानंद प्रभु के कुछ चरित्र और उनके तत्व के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में खास करके दो चीजें मुख्यतः कह सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के अत्यंत दिव्य मनोरम लीलाओं को श्रवण करने से पहले हम सबको चाहिए कि नित्यानंद प्रभु के तत्वों के बारे में जानें कि ये नित्यानंद प्रभु है कौन। तब जाकर उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार से जो परम पुरुष है वो एक मनुष्य जैसा लीलाओं को करते हैं, कितना अद्भुत और मनोरम। इसलिए हम पहले नित्यानंद प्रभु के उन गुह्य तत्वों को जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद उनके कुछ स्वीट पास टाइम्स को भी हम लोग सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु के तत्वों के बारे में, उनके परिचय के बारे में चैतन्य चरितामृत आदि लीला के पांचवें अध्याय में वर्णन किया गया है। मैं आप लोगों के पास एक कागज पहुंचा होगा, इस कागज में पांच श्लोका है। ये पांच श्लोका चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में से है, और इन्हीं पांच श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के परिचय बताया गया है। तो हम लोग इन पांच श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर बाद में एक एक श्लोक के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे नित्यानंद प्रभु के तत्वों को जानना और समझना अत्यंत कठिन है। जब तक स्वयं भगवान की कृपा नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जान सकता है। एक बार मैं प्रवचन में सुन रहा था, एक प्रभु जी के कमलोचन को बतला रहे थे कि जो व्यक्ति ये कहता है या ये सोचता है कि मैं अभी जान गया हूं, तो फिर वो कुछ नहीं जानता है, और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कभी नहीं जान सकता हूं क्योंकि वे अनंत है, तो वो व्यक्ति जान लिया है भगवान को। तो इस प्रकार के नित्यानंद के तत्व अनंत और अत्यंत गुह्य है, उनकी कृपा के बिना हम उनको समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए यहाँ पे एक श्लोक है जो उनकी कृपा की याचना करते हैं, तो कृपया सभी लोग इस श्लोक को मेरे बाद दोहराएंगे। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम्, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम्, श्री नित्यानंदमीश्वरम्, नित्यानंद ईश्वरम्, यस्य छया तत्स्वरूपम्, यस्य छया तत्स्वरूपम्, अज्ञेन अपि निरूपयेत्, अज्ञेन अपि निरूपयेत्। मैं उन भगवान रूप से नित्यानंद के नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर मूर्ख भी उनके स्वरूप को पहचान सकता है। आप लोग दोहराएंगे,
मैं उन भगवान रूप
श्री नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ
जिनका ऐश्वर्य
अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर मूर्ख भी उनके स्वरूप को पहचान सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु की श्लोकों को मेरे बाद दोहराइए। संकर्षण कारण तसाई, गर्भोदसाई च पयोदिशाई, चेतस्य यस्यां सकलस नित्या, नन्दाक्षर रामः शरणं ममास्तु, मायातीत व्यापि वैकुंठ लोके, पूर्णेश्वर्यस्य चतुर्व्यूहम् मध्ये, रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम्, तं श्री नित्यानन्दरामं प्रपद्ये, मायाभर्तजाण्डसङ्घाश्रयाङ्गः, ते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये, यस्येकांशस्ति पुमानादिदेव, तं श्री नित्यानन्दरामं प्रपद्ये, यस्यांशयां सहस्तीलगर्भोदसायी, यन्नाब्जं लोकसंघातनाळम्, लोकस्रष्टु सूतिका धाम धातु, तं श्री नित्यानन्दरामं प्रपद्ये, यस्यांशयां सह परमात्माखिलानां, पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धादिशायी, शोणेर्भर्ता यत्कला सोप्यनन्त, तं श्री नित्यानन्दरामं प्रपद्ये, तं श्री नित्यानन्दरामं प्रपद्ये। श्री नित्यानन्द प्रभु की। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में पहले ही नित्यानंद मंगलाचरण में नित्यानंद तत्व का वर्णन किया गया है। तो हम अभी एक एक इन श्लोकों को समझने के लिए प्रयास करेंगे और इन सारे श्लोकों को 5 नंबर अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। सबसे पहला है संकर्षण कारण तसाई गर्भोदसाई च पयोदिशाई।
संकसम, कारण सागर या कारण दक्षाई, इन सारे नामों को आप पहले सुने हुए रहेंगे। ये नित्यानंद प्रभु वो है जिनकी अंश कारण दक्षाई सागर में सोने वाले महाविष्णु है, कारण दक्षाई विष्णु है। ऐसे नित्यानंद को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे बतलाया गया है। इसको समझने के लिए चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है गया कि भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं और बलराम फिर से अपने आप को पांच रूपों में विस्तार करते हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। वो पांच रूप है महासंकर्षम, कारण दक्षाय विष्णु, गर्व दक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। ये सृष्टि किस प्रकार से हुआ है इन सारा चीजें इसमें बताया गया, क्योंकि भगवान नित्यानंद प्रभु के तत्व को या उनकी परिचय को जानना है तो इन सारे चीजों के बारे में जानना चाहिए अपने को। श्री बलराम राम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करेण कृष्ण सेवन, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए स्वयं बलराम पांच प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। सबसे पहला है संकर्षण, उसके बाद कारण दक्षाय विष्णु, गर्व दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु और शेषनाग, इन पांच रूपों को वो धारण करते हैं बलराम। इसके लिए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए असलियत में भगवान कृष्ण अगर कुछ करते हैं, इस पूरे संसार का जो सर्व कारण कारण माना गया है, ये सब कुछ करते हैं बलराम जी के द्वारा। वो केवल अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं और उसके बाद वो नित्य अपने गोलोक में नित्य लीला में निवेश रहते हैं, मग्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सखाओं के साथ, गोपियों के साथ वो अपनी लीला में रहते हैं। इसके बाद जो बलराम वो उस वृंदावन में कृष्ण की सेवा तो करते हैं आध्यात्मिक जगत में, साथ साथ में वही बलराम संकर्षण रूप को धारण करके फिर इस पूरी भौतिक संसार का सृष्टि संहार पालन ये सब कुछ करते हैं वही बलराम। कृष्ण का मूल कारण इसीलिए माना गया क्योंकि उस बलराम का भी वो आदि है। तो ये जो बलराम है सबसे पहले वो संकर्षण बनते हैं। ये संकर्षण नाम आप लोग सुने रहेंगे, चतुर्व्यूह होता है। चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, ये चार जन होते हैं। ये विष्णु स्वरूप होते हैं, इनके चार चार भुजाएं होते हैं और ये चतुर्व्यूह रहते हैं कहां? द्वारका में। द्वारका में जो स्थित चतुर्व्यूह है उनको पहला चतुर्व्यूह कहा गया है और द्वारका की चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनसे फिर अनेकों चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं जो कि बाकी अनंत वैकुंठ लोकों में अलग अलग जगहों पे ये स्थित रहते हैं इस प्रकार से। और वही महासंकर्षण, वही जो संकर्षण है मूल द्वारका में स्थित, उनसे कारण दक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं या विस्तारित होते हैं और कारण दक्ष सागर में वो शयन करते हैं। सबसे पहला हमको ये जानना चाहिए कि कारण दक्ष सागर कौन सा है। ये पूरा सृष्टि दो भागों में विभक्त किया गया है, पूरा सृष्टि। एक भाग है जो अत्यंत छोटा, उसको भौतिक संसार कहते हैं और एक है आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार को डिवाइड करने के लिए, विभाजित करने के लिए बीच में एक वाटर लेयर है, एक जल का स्तर है, उसे कारण सागर कहा जा रहा है। उसको कारण सागर और विरजा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वाटर लेवल है, ये कारण सागर आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को विभाजित करता है। ये भौतिक जगत से परे हैं और इस जल के बाद, इस कारण सागर के बाद से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। ये जो कारण सागर है वही है जिस समुद्र से एक बूंद पानी केवल ब्रह्मांड की वो पर्दा को भेद कर नीचे आ गया था, वो आज तक सदियों से पापियों का पाप को धुल रहा है गंगा के रूप में। बस एक बूंद पानी उस समुद्र का यहाँ पर आ गया था, वो भी उसका एक भाग पृथ्वी लोक में घूम रहा है, उसका और तीनों भाग इस लोक की अलग अलग लोकों में घूम रहे हैं, ऊपर की लोकों में, उसमें से एक भाग जो है, ये जो कारण सागर से एक बूंद गिरा ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए, वो आके मेरु पर्वत के ऊपर टपका और मेरु पर्वत को चार डायरेक्शन में विभाजित हुआ। उसमें से एक डायरेक्शन है जो गंगा नदी हमारे पृथ्वी लोक में यानी भूलोक में प्रभावित हो रही है और इतने लोगों का पापों को नाश कर रही है, एक बूंद। ये वो सागर है कारण सागर। इसे कारण सागर क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि यही इस भौतिक संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है। क्योंकि महासंकर्षण जब अपने आप को महाविष्णु कारण दक्षाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, वो कारण दक्षाय विष्णु ये कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं और उनकी जब सांस छोड़ते हैं और उनकी रोम के कणों से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और हरेक ब्रह्मांड में वही कारण दक्षाय विष्णु फिर से उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में। जब भी ये गर्भ दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर देखते हैं कि सब कुछ अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है और उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है वहां पे। तब उन्होंने क्या करते हैं, अपने शरीर से जल उत्पन्न करते हैं, पसीना, और वो पसीने से इस भौतिक ब्रह्मांड की आधा भर देते हैं, इस अंडाकृति जो भौतिक ब्रह्मांड है उसको आधा भर देते हैं, फिर उसके ऊपर अनंत से इसके ऊपर लेट जाते हैं, वो है गर्भ दक्षाय विष्णु। जब भी भौतिक ब्रह्मांड बहुत सारे कारण दक्षाय विष्णु यानी कारण दक्षाय महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं, फिर ये गर्भ दक्षाय विष्णु उनके अंदर प्रवेश करते हैं और पूरे उस ब्रह्मांड की आधा पानी से भर देते हैं, उस गर्भ दक्षाय विष्णु की नाभि से कमल फूल उत्पन्न होता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए रहते हैं। फिर बेचारे ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, फिर वो तपस्या करते हैं, तब जाके उन्हें पता लगता है कि वो ब्रह्मा है और उनको सृष्टि करना है। फिर इस भौतिक ब्रह्मांड की जो आधा भाग बचा हुआ है ऊपर, क्योंकि आधा तो पानी भर गया और आधा ऊपर बचा हुआ है, उस आधे में उन्होंने 14 भुवन बनाते हैं। कौन? द सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा। वो 14 भुवन को बनाते कहां पे? उस भौतिक ब्रह्मांड की ऊपरी आधे भाग में। मगर इस सब होने के बाद भी वो चल प्रचल नहीं होता है भौतिक प्रकृति। ये जो महाविष्णु है उस भौतिक प्रकृति के ऊपर जब तक दृष्टिपात नहीं करते हैं तब तक ये भौतिक प्रकृति कोई काम की नहीं रहती है। क्योंकि प्रकृति अपने आप में उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है, वो हमेशा अधीनस्था है, किसी के अंदर रहने वाली है। तब जब इस ब्रह्मा जी प्रयास करते हैं मगर कुछ नहीं होता है, तो महाविष्णु वो दृष्टि निक्षेप करते हैं इस भौतिक प्रकृति के ऊपर, वो देखते हैं, वो देखने पर उनकी दो आंखों से दो लाइट है ना, दो शक्ति आके स्पर्श करती है भौतिक प्रकृति को। वो दो शक्ति क्या है मालूम है? एक जीव शक्ति और एक काल शक्ति। ये दो शक्तियां आके इस भौतिक प्रकृति को स्पर्श करते हैं, तभी जाके जीव शक्ति जैसे प्रवेश करता है तभी गर्भदान प्रकृति में किया जाता है। अहम बीज प्रद पिता कहते हैं ना भगवत गीता है, वो इनके द्वारा करते हैं, ये महाविष्णु करते हैं उसको। वो देखने पर प्रकृति में हलचल मचता है, गर्भ को धारण करती है वो वीर, तब सारे जीव चढ़ प्रचलित होते हैं। और जैसे ही ये जीव पहुंचते हैं वैसे ही एक टाइम साइकिल चालू होता है, टिक 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 करना, तब तक फिर प्रलय तक, जब उन्होंने सांस लेंगे फिर सब कुछ इस भौतिक प्रकृति सृष्टि वो उनके अंदर समा जाएगा। ये समय, ये काल तब तक चलेगा। काल शाश्वत है मगर उस भौतिक ब्रह्मांड के लिए, जो ब्रह्मांड की समय अभी चालू हुआ है उसके लिए टाइम साइकिल चालू होता है। फिर चल प्रचल होता है, ये 14 लोग बनाते हैं, फिर बाद में देवता है, फिर अलग अलग लोगों का अलग अलग जो देवता है ऋषि मुनि इत्यादि रहते हैं, पापी उनके हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, पाताल में वगैरह। ये पूरा भौतिक सृष्टि का मूल कारण कौन बने? महाविष्णु। और वो किसके ऊपर, किसके ऊपर है? ये समुद्र में, विरजा नदी में, क्योंकि ये विरजा नदी का पानी ही इस संसार का कारण बना हुआ है, इसलिए उसको कारण सागर कहा गया है। ऐसे कुछ जगहों पर वर्णन है। और उस कारण जल में लेटे हुए जो व्यक्ति है उनको कारण दत्तसाय विष्णु कहा गया है। भगवान के 6 प्रकार के अवतारों में से एक अवतार है पुरुष अवतार। ये 3 पुरुष अवतार होते हैं, उसमें से सबसे पहला पुरुष अवतार है कारण दत्तसाय विष्णु। 6 प्रकार के अवतार है भगवान के, लेकिन उसमें से एक है पुरुष अवतार। इन पुरुष अवतार 3 होते हैं, उसमें से सबसे पहला पुरुष अवतार होते हैं ये महाविष्णु, जो कि कारण दत्त सागर में लेटे हुए हैं, जिनकी लोम से ये जो अंडाकृति ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। भगवान गोलोक वृंदावन में जिस रूप में निवास करते हैं, उस रूप जो अभी अभी मैं भागवतम में वर्णन कर रहा था, जो कि मनुष्य जैसा दिखते हैं, उसको स्वयं रूप कहा जाता है, जिस रूप में निवास करते हैं। फिर उस स्वयं रूप से वैभव प्रकाश को विस्तार करते हैं अपने आप को बलराम के रूप में। जो बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, उस बलराम के उस स्वरूप को, विस्तारित भाग को, उसको वैभव प्रकाश कहा जाता है। वो पावर में सेम है मगर उनकी जो बॉडीली कलर है वो डिफरेंट है, और उनका जो मूड है, भाव, वो भी अलग है, इसीलिए उसको वैभव प्रकाश कहा गया है। और एक प्रकाश है और एक विस्तार है जिसको प्रभव प्रकाश भी कहा जाता है। भगवान अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं मगर उस समय उनका बॉडीली कलर, शरीर का रंग एक ही रहता है और उनका स्वभाव, उनका भाव भी एक ही रहता है। जैसे रासलीला में है ना, हरेक गोपी के साथ भगवान डांस कर रहे थे, उसका प्रभाव प्रकाश कहते हैं। और जब भी भगवान कृष्ण बलराम बन जाते हैं, बलराम और कृष्ण में अंतर नहीं है, वो सेम व्यक्ति है मगर उनकी बॉडीली कलर, उनका शारीरिक रंग अलग है और उनका भाव अलग है, कृष्ण की सेवा का भाव, इसीलिए उसको विभव प्रकाश, प्रभाव प्रकाश और विभव प्रकाश कहते हैं। और उस जो विभव प्रकाश है, जो बलराम है, वो बलराम फिर से वो अपने आप को 5 रूपों में, 5 अवतार बनते हैं, जो जिसको स्वांश कहते हैं, और फिर बाद में और एक भाग को विलास कहते हैं, जो विलास है और शत्रुव्यूह है। ये सारे चीजें चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में मिलेगा हमें अच्छी तरह से, अगर याद रखना है तो। स्वयं रूप भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, उनसे विभव प्रकाश होता है जो बलराम है। विभव प्रकाश उसको कहा जाता है जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं मगर उनके शरीर की रंग और उनका भाव अलग हो जाता है, तभी विभव प्रकाश होता है। तवव प्रस्ताश उसे कहते हैं जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं मगर उनकी बॉडीली कलर सेम रहता है और उनका मूड भी सेम रहता है जैसे रासलीला में। और ये जो विभव प्रकाश है फिर वो अपने आप को स्वांत वो अवतार लेते हैं, ये जितने भी अवतार होते हैं वो कृष्ण से नहीं इनसे होते हैं बलराम से, उनको स्वांत कहते हैं। ये छह प्रकार के अवतार होते हैं और उसमें से एक विलास होते हैं और एक भाग जो विलास वो जो विष्णु फॉर्म्स होते हैं चार भुजाए वाले उनको विलास कहते हैं। तो सबसे पहला विलास है पहला शत्रुव्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव इनको विलास कहते हैं। और इसमें से विलास में से जो पहले संकर्षण है वो ही संकर्षण कारण दक्षाय सागर में कारण दक्षाय विष्णु के रूप में शयन करते हैं और उनकी रोम से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और वही इस भौतिक संसार के ऊपर दृष्टिपात करने पर इस भौतिक संसार सरल प्रचल हो जाता है, इसीलिए उनको कारण सागर कहा जाता है और उसके ऊपर लेटने वाले भगवान को कारण दक्षाय विष्णु कहा जाता है। और पुरुष अवतारों में से सबसे पहला प्रथम पुरुष इनको कहा गया है। तो इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु क्रमशः कारण सागर के गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। संकर्षण जो विभव विलास में से सबसे पहला व्यक्ति है वही कारण दक्षाय विष्णु बनते हैं, कारण दक्षाय विष्णु गर्भ दक्षाय विष्णु बनते हैं और गर्भ दक्षाय विष्णु पद्मा के रूप में क्षीर दक्षाय विष्णु बनते हैं। और ये सभी लोग ये जो संकर्षण है फिर शेष नाग बनते हैं अनंत शेष जो भगवान कृष्ण की अनंत रूपों में सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से पांच रूपों को धारण करते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो इन जो पांच रूपों का जो मूल है वो नित्यानंद राम है। तो इस प्रकार के नित्यानंद को मैं प्रणाम करता हूं करके यहां बताया गया। समझ में आया? संकर्षण कारण दक्षाय विष्णु गर्भ दक्षाय विष्णु शिरो दक्षाय विष्णु और अनंत शेष का भी जो मूल है जिनके अंश है ये सब वो है नित्यानंद प्रभु और उन्हें उनके आज जन्मदिन है। ये पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्य शीतत्रिव्यूह मध्ये रूपम यशद्भाति संकर्षणाख्यम तमसे नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया तीते व्यापी वैकुंठ लोके माया तीते अर्थात माया से परे वैकुंठ लोके अर्थात इस भौतिक जगत इस भौतिक माया से ऊपर एक जगत है जिसको बहुत परम व्योम या वैकुंठ जगत कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या में बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य लिखते हैं क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जिन लोगों ने केवल इन भौतिक तत्वों के आधार पर सांख्य फिलोसफी के द्वारा सांख्य दर्शन के द्वारा ये समझते हैं और समझाते हैं कि इस भौतिक संसार से परे और कुछ नहीं है। वो ऐसा कहते हैं ये भौतिक संसार और ये भौतिक प्रकृति 24 तत्वों से बनता है और सांख्य दर्शन का अर्थ होता है एक एक करके इस 24 तत्वों को गिनना। और इस सांख्य दर्शन के द्वारा वो समझाते हैं कि इस भौतिक संसार से ऊपर और कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा उनकी उस ये जो व्याख्या को उसको खंडन करके ये बतलाते हैं कि इस भौतिक प्रकृति से भी परे एक जगत है जिसको परम व्योम या वैकुंठ लोक कहा जाता है। भगवान की पूरी सृष्टि में चार भागों में से तीन भाग ये आध्यात्मिक जगत है। यह आध्यात्मिक जगत कैसे बना हुआ है? भौतिक जगत के बाद ये कारण सागर है। इस कारण सागर के ऊपर अत्यंत अंधकार है और इस अंधकार के बाद एक उजाला यानी ज्योतिर्मय लोक मिलेगा, अत्यंत तेजमय लोक मिलेगा। वो इस भौतिक वैकुंठ जगत से निकलने वाली तेज है, यानी भगवान की शरीर से निकलने वाली तेज। जिन लोगों ने ब्रह्म की उपासक है और जिन लोगों ने भगवान के द्वारा मारे गए हैं, उन लोगों ने उस ब्रह्म तेज को प्राप्त होते हैं। ये कहां आता है? भौतिक जगत, भौतिक जगत के ऊपर कारण सागर, कारण सागर के बाद अत्यधेरा, और अंधकार को पार करने के बाद ये आलोकमय ज्योतिर्मय लोक आएगा। और इस ज्योतिर्मय लोक आने से पहले भी और एक जगह आता है जिसको कैलाश कहते हैं, कैलाश कहते हैं, जहां पे सदाशिव निवास करते हैं, जो सारे शिव तत्वों का मूल है। और ये सदाशिव भी वो महासंकर्षण के ही विस्तार है। और यहाँ के सदाशिव चतुर्भुज वाले होते हैं और गोरे होते हैं। और इस जो तेज है वो ब्रह्म तेज, ये पूरे वैकुंठ जगत को घेरा हुआ है। और ये कारण सागर जो है ना, वो भी वैकुंठ जगत को घिरा हुआ है। जब भी मैं कहता हूँ तभी आप लोगों के मन में ऐसा बैठ सकता है कि भौतिक जगत के ऊपर ऐसा एक लेयर पड़ा हुआ है। नहीं, ये किस प्रकार से मालूम है? ये आध्यात्मिक जगत है ना, तो पूरा आध्यात्मिक जगत की चारों तरफ ये कारण सागर घेरा हुआ है उसको। ये कारण सागर पूरा आध्यात्मिक जगत की कवरिंग, ये कारण सागर है। विरजा नदी है वो, एक पास टाइम हुआ था भगवान कृष्ण राधा रानी से छोड़कर और विरजा के पास से। तो एक बार राधा रानी को पता लगा, तो राधा रानी जब विरजा के वहां गई, बिचारी विरजा डर के मारे नदी बन के आध्यात्मिक जगत के चारों ओर बहने लगी। वो विरजा नदी है, एक जगह ये वर्णन भी मिलता है, वो कारण सागर है। और उसके अंदर आध्यात्मिक जगत कैसा है मालूम है? छोटा सा नहीं, ये अनंत है। और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट थे, अलग अलग वैकुंठ लोक हैं। इन सारे वैकुंठ लोगों में से सबसे ऊंचा उसको कृष्ण लोक कहते हैं, अधिभौतिक क्लेश इसको कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना, तीन प्रकार के क्लेशों में से एक अधिभौतिक क्लेश होता है, तो इसको अधिभौतिक क्लेश कहा जाता है। तो ये पूरा आध्यात्मिक जगत की जो ऊपरी लोक है, उस ऊपरी लोक को कृष्ण लोक कहते हैं। और ये कृष्ण लोक तीन भागों में विभाजित है। कितने भागों में? तीन भागों में, अर्थात तीन स्तर है कृष्ण लोक का। सबसे ऊपर है गोलोक, उसके नीचे है मथुरा, फिर द्वारका। ये तीन प्रकार के स्तर में ये कृष्ण लोक बना हुआ है। इसे कृष्ण लोक क्यों कहते हैं? ये तीन जगहों पे भगवान अपने द्विभुज रूप में निवास करते हैं, बाकी सब जगहों पे भगवान चतुर्भुज के रूप में निवास करते हैं, इसीलिए इसे कृष्ण लोक कहते हैं। सबसे ऊपर जो लोक है वो हेडक्वार्टर है, राजधानी वैकुंठ प्लैनेट का, उसको श्वेत द्वीप भी कहते हैं, और उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं ना, वो मूल है। वहां पे भगवान कृष्ण जो स्वयं रूप राधा रानी गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, वहां रहते हैं वो। उसके नीचे मथुरा और जो द्वारका है, वहां पे भी कृष्ण रहते हैं, मगर ऐश्वर्यमय राजा की जैसा रहेंगे वो, क्षत्रिय की जैसा, और बहुत सारा मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वहां करते रहते हैं, उस लोक के लिए सेवाओं को स्वीकार करते हैं। कहां पे? मथुरा और द्वारका में। गोलोक वृंदावन में उनका स्वरूप कैसा है? स्वरूप ऐसे पेंसिल पहन के नहीं, एक ग्वाल वाले जैसा रहते हैं, ग्वाल बाल, गमछा पहन के, मोरपंख, बांसुरी। और मथुरा और द्वारका में वो ड्रेस पहने हुए रहते हैं कि राजा की जैसा, एक राजा की जैसा, क्षत्रिय की जैसा निवास करते हैं, मगर द्विभुजा। कभी कभी मथुरा और द्वारका में चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि द्वारका में वासुदेव कृष्ण होते हैं ना, वो चतुर्भुज कभी कभी होते हैं, मगर विशेष तो द्विभुज में ही रहते हैं। इसलिए ये तीन लोकों को कृष्ण लोक कहा गया है। ये वैकुंठ लोगों की सबसे ऊपरी भाग में है। इसके अलावा जितना वैकुंठ लोग हैं, सब अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, और सब में भगवान अलग अलग चतुर्भुज के रूप में और अलग अलग अवतार निवास करते हैं। और ये अनंत है, कहाँ पे कूर्म के रूप में, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग रूपों में ये भगवान निवास करते हैं। ये वैकुंठ प्लैनेट का वर्णन है। इस प्रकार की वैकुंठ जगत जो है वो कहाँ पे है, माया तीते अर्थात माया जगत, इस भौतिक जगत के ऊपर है वैकुंठ लोके। और वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य मध्य, वैकुंठ लोक के अंदर ऐश्वर्य के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य मध्य, पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, चतुर्व्यूह के अंदर। अभी चतुर्व्यूह का समझना चाहिए, जब भगवान बलराम बनते हैं, बलराम से विलास होकर वो चतुर्व्यूह बनते हैं। ये चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव सबसे पहला चतुर्व्यूह बनते हैं द्वारका में। कहां पे? द्वारका में। और ये द्वारका और मथुरा में ही निवास करते हैं चतुर्व्यूह। द्वारका में निवास करने वाले ये जो चार जन है जिनको चतुर्व्यूह कहा जाता है, उसमें से जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहा जाता है। ये महासंकर्षण बाकी सब जगहों पे जो चतुर्व्यूह है उनका उत्पत्ति है, मूल है। और वही महासंकर्षण से कारण दर्शाए विष्णु बनते हैं। ये पहला चतुर्व्यूह है। रूपम जस्युद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। जो पहला चतुर्व्यूह में से जो संकर्षण है वही नित्यानंद राम है, वही नित्यानंद है जिसके आज जन्मदिन है। बताइए, ये जो आम व्यक्ति की जैसा लीलाएं करते हैं, ये नित्यानंद प्रभु इस संसार में आकर वो कोई सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं है, इस पूरे संसार का सृष्टि का मूल कारण है वो नित्यानंद है। आप आगे जाके देखेंगे उनकी लीलाओं में एक आम आदमी के जैसा चिल्लाते हुए दौड़ते रहेंगे, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कभी वो अलंकारों को आभूषणों को धारण करके घूमते हैं, अपने आप में हंसते हैं, और कभी कभी सारे वस्त्रों को निकाल कर वो घूमते रहते हैं कृष्ण प्रेम में वशीभूत होके। कभी कभी बच्चों के साथ खेलते हैं, और कभी कभी गंगा नदी में पूरा बाढ़ आया हुआ गंगा नदी में कूद जाते हैं और उसमें तैरते रहते हैं क्रोकोडाइल्स के साथ, मगरमच्छों के साथ, और मगरमच्छों के साथ खेलते रहते हैं। इस प्रकार के जो लीलाने वाला व्यक्ति नित्यानंद वो कौन है, स्वयं संकर्षण की भी उत्पत्ति है, वो ऐसे व्यक्ति है। 9 नंबर श्लोक में बतलाते हैं, माया भर्ता जांड संघाश्रयांगः तेते साक्षात कारणाम्बोधि मध्ये यस्येकांशस्ति प्रमाण आदिदेव तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया अर्थात भौतिक प्रकृति, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला या पति, माया की पति वो कौन है, भगवान विष्णु जो कारण सागर में निवास करते हैं। क्यों कारण सागर में निवास करने वाले विष्णु को मायापति क्यों कहा जाता है, क्योंकि माया को गर्भधारण करने कौन मदद कर रहा है और किसके द्वारा गर्भधारण किया गया है, वो कारण दत्ता है विष्णु के द्वारा। कारण दत्ता है विष्णु जब दृष्टिपात किए इस भौतिक प्रकृति के ऊपर, तभी जाकर इस भौतिक प्रकृति में जीवात्मा चल प्रचलित है। इसीलिए इस भौतिक प्रकृति का पति यानी भर्ता किसको कहा गया, कारण दत्ता है विष्णु को। ये कारण दत्ता है विष्णु भी जिनके अंश है, तेते साक्षात कारणाम्बोधि मध्ये, वो कहाँ पे सोए हुए हैं, कारण सागर के ऊपर सोए हुए हैं। यस्ये कांशस्ति पुमन आदि देवस, और जो इस नित्यानंद राम के अंश स्वरूप है। आदि देवस का अर्थ होता है प्रथम पुरुष, मैं बोला था पुरुष अवतारों में से सबसे पहला पुरुष होता है कारण दत्ता है विष्णु, ये कारण दत्ता है विष्णु है, उनका भी मूल है ये नित्यानंद प्रभु। यस्य अंश अंश श्रील गर्भोदशाई, अभी कारण दत्ता है विष्णु संकर्षण की अंश है, ये गर्भदत्ता है विष्णु नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश यानी कला भी माना जाता है, अंश के अंश को कला कहा जाता है। तो गर्भदत्ता है विष्णु जो गर्भोदक यानी हरेक ब्रह्मांड के अंदर निवास करते हैं, आपको मैंने बताया था जब भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं कारण दक्षय विष्णु के शरीर से, वो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर कारण दक्षय विष्णु गर्भदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, तब अंदर देखते हैं एकदम से अंधेरा, इसीलिए अपने शरीर से पसीना वो उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड को आधा डुबा देते हैं, उस आधा डुबा कर उसके ऊपर अनंत सैया बना के वहां पे सो जाते हैं। और लक्ष्मी, और केवल एक लक्ष्मी नहीं अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं, उसमें से तीन मुख्य है, श्री नीला और भू, श्री भू और नीला करके तीन मुख्य लक्ष्मी मेनली वो उनकी सेवा करते हैं। ये लक्ष्मियों का ज्यादातर वर्णन श्री संप्रदाय में और मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य की व्याख्याओं में मिलता है करके प्रभुपाद जी ने व्याख्या करते हैं। और ये नीला लक्ष्मी को हमारे गौड़ीय वैष्णव कभी कभी लीला लक्ष्मी भी कहते हैं, और ये वही लीला लक्ष्मी कभी कभी वृंदा देवी के रूप में ही आती है। और लीला लक्ष्मी का काम रहता है भौतिक जगत में जन्म होगी, भगवान से विवाह करेगी, फिर वो वापस चली जाएगी। जैसे पद्मावती हो गई तिरुपति में भगवान बालाजी को विवाह करने आई थी, जैसे अंडाल हो गई श्री संप्रदाय के, ये सब नीला लक्ष्मी के अवतार हैं। ऐसे लक्ष्मियां हजारों लक्ष्मी सहस्त्र उनकी सेवा करते रहते हैं, किसकी? गर्भदक्षाय विष्णु की। अभी उस गर्भदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसको कमल नाम कहा गया है, जिसमें ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा 14 लोकों को जो बनाते हैं वो कहां पे, वो जो नाभि से उत्पन्न होने वाली कमल की नाड, उस कमल नाड के अंदर 14 लोगों को बनाते हैं, और ये 14 लोग पानी के ऊपर रहता है। अर्थात भौतिक ब्रह्मांड पूरा 14 भुवन नहीं है, भौतिक ब्रह्मांड के आधा पानी है और आधा 14 भुवन है, और ये आधा पानी के ऊपर विष्णु सोते हैं, उसके ऊपर 14 भुवन है, और ये 14 भुवन ब्रह्मा निकले हुए जो कमल का नाड है ना उसके अंदर निवास है उसका। अभी ध्यान से सुनिए, ये जो 14 भुवन बनाते हैं, इस 14 भुवन में से हम लोग बीच में है उसको भूलोक कहते हैं, और भू के ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इस प्रकार से सत्यलोक में ब्रह्मा रहते हैं, फिर तपलोक जनलोक में तपस्वी इत्यादि रहते हैं, उसके बाद स्वर्गलोक आता है, स्वर्गलोक में देवी देवता रहते हैं। और इस स्वर्गलोक के अंदर एक जगह है जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड का सेंटर माना जाता है, वो है ध्रुव, ध्रुव तारा, द पोल स्टार, ध्रुव लोक, और जहां पे ध्रुव महाराज रहते हैं। अभी ये गर्भदक्षाय विष्णु जो 14 भुवनों से बाहर भी है, वही गर्भदक्षाय विष्णु फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में ये 14 भुवन के अंदर जो ध्रुव लोक है ना, वहां पे एक क्षीर सागर है अर्थात मिल्क ओशन। ये मिल्क ओशन कहां पे है? ध्रुव लोक में, पोल स्टार के अंदर है, वहां पे जाके शिरोदक्षाय विष्णु रूप में सो जाते हैं। जो क्षीरोदक्ष, उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं, क्योंकि क्षीर अर्थात दूध है ना, और उसके ऊपर सोते, क्षीर मतलब वो सुबह मिलने वाला खीर नहीं समझिएगा, दूध है ना, दूध को भी क्षीर कहते हैं, उसके ऊपर वो सोते हैं, उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। अभी ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है ना, यही व्यक्ति है जो इस भौतिक संसार की समस्याओं का हल करने वाला है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और उनका वो वहां पे क्यों रहते हैं? इस ब्रह्मांड के 14 भुवन के अंदर की डिस्टर्बेंसेस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हम जब भी पुराणों में देखते हैं कि असुर लोग आके डंडा मारने लगे और इंद्र इत्यादि भागकर ब्रह्मा शिव और किसी के पास सॉल्व नहीं होता है तो भाग के कहां जाते हैं? और वो विष्णु को भी देख नहीं पाते हैं, वो जाते हैं क्षीर सागर के किनारे, वहां पे पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। और वो क्षीर सागर वो उस सांप 14 लोगों के बाहर नहीं है, वो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही जो ध्रुव लोक है जहां पे ध्रुव महाराज भी रहते हैं, वहीं पे क्षीर सागर है जहां पे शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। उस क्षीर सागर के किनारे देवता लोग तपस्या कर जाके प्रार्थना करते हैं, मगर भगवान को देख नहीं पाते। विचार करिए, शिरोदक्षाय विष्णु जो भगवान की बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से कारण दत्ताय, कारण दत्ताय से गर्व दत्ताय, गर्व दत्ताय से शिरो दत्ताय, इतने लंबे है, उनको ही दर्शन नहीं कर पाते देवता लोग। और इन सभी लोगों का जो स्रोत है, मूल है, वो स्वयं नित्यानंद प्रभु है, जो यहाँ पे आकर लीलाएं किए और हमारे जैसे इस संसार के जीवात्माओं को कृष्ण प्रेम को प्रदान किए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलकर, वो नित्यानंद प्रभु। बताइए इसीलिए जस्य अंश अंश गर्भदशाई, गर्भदशाई को अंश अंश दो बार यूज किया गया। उसके बाद वाला श्लोक अगर आप देखेंगे, यस्य अंश 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 परमात्मा खिलाणम, अर्थात तीन बार अंश शब्द का प्रयोग किया गया। तीन बार मतलब जिसका अंश, उसके अंश और उसके अंश, क्योंकि कारण दत्ताय विष्णु, उनके अंश गर्भ दत्ताय विष्णु और उनके अंश है ये शिरो दत्ताय विष्णु। उनको क्या कहा गया, परमात्मा खिलाणम, ये अखिल जीवात्माओं में और परमात्मा के रूप में कण कण में निवास करते हैं, इसीलिए ये क्षीरोदत्ताय विष्णु को कुछ लोग परमात्मा के रूप में भी जानते हैं और क्षीरोदत्ताय विष्णु के रूप में भी जानते हैं। ये जिनके अंश के अंश के अंश है वो नित्यानंद प्रभु है। पोष्टा विष्णु भाति दुग्धा विषय, पोष्टा इस भौतिक संसार का भरण पोषण करने वाला ये क्षीरोदत्ताय विष्णु। तीसरे नंबर लाइन में बताया गया, क्षोणिर भरता यप कला सौप्य अनंत, जिनकी कला, कला मतलब अंश के अंश को कला कहा गया है, वो है अनंत। और ये अनंत कौन है मालूम है, जिसको नाग के रूप में जानते हैं हम लोग, शेष नाग, अनंत नाग, इनका दो नाम है, शेष और अनंत। शेष क्यों नाम पड़ा मालूम है, क्योंकि हमारे भौतिक ब्रह्मांड के अपने सर के ऊपर और लिए हुए घूमते हैं, जब पूरा संसार का प्रलय होता है इनकी भ्रुकुटि से अग्नि उत्पन्न होता है, और वो अग्नि और उनके साथ साथ 11 रुद्र प्रकट होते हैं और उन लोगों ने इस पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं। मगर पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी शेष बच जाता है, वो कौन है, वो नाग, इसलिए उनको शेष कहा गया। और उनको अनंत भी कहा जाता है। अनंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही शेष नाग अनंत रूप में, अनंत स्वरूप में, अनंत प्रकार से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। कभी भगवान के लिए डनलॉप बेड बन जाते हैं, कभी कभी उनके लिए चेयर बन जाते हैं, कभी कभी उनके लिए छतरी बनते हैं, कभी कभी उनके लिए मंदिर बन जाते हैं, कभी कभी उनके लिए मृदंग बन जाते हैं, कभी करताल बन जाते हैं। तो इन सारा अलग अलग प्रकार की स्वरूपों से भगवान कृष्ण की सेवा कौन करता है, ये अनंत है। इसलिए उनका अनंत रूपों में, अनंत प्रकारों से भगवान कृष्ण की सेवा करने के वजह से उनका नाम हुआ अनंत। इस बात पर एक बार की घटना याद आया, नेत्रोत्सव का समय था भगवान जगन्नाथ जी का, रथ यात्रा के पहले वाला दिन सभी लोग, हम लोग नेत्रोत्सव में आए थे आश्रम से दौड़कर भगवान का दर्शन करने, और सब यहाँ खड़े थे साथ में कमल लोचन पुपोर सभी हम लोग थे। तभी हम क्या किए थे, दीवार में ऐसे टेका लेके थे यहाँ पर, तो कमल लोचन पुपोर जब एंट्री किए सबसे पहला उनका दृष्टि मेरे ऊपर गिरा और सीधा मेरे पास आए, एक जोर से बजाया मुझे और मैं सीधा खड़ा हो गया, कुछ बोला नहीं। बाद में उन्होंने समझाया कि जो मंदिर है वो भगवान अनंत देव अपने आप को मंदिर के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है। इसीलिए यही संकर्षण, यही बलराम, उनके अंश के अंश जिसको कला कहा जाता है, वो अनंत रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत। और सृष्टि की प्रलय के बाद भी शेष बच जाते हैं, इसलिए उनका नाम शेष नाग। इस प्रकार से ये नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं है, इस पूरी भौतिक सृष्टि का मूल कारण ये नित्यानंद प्रभु है। केवल इस भौतिक सृष्टि का ही नहीं, ये भौतिक सृष्टि तो शुरू होता है कारण दत्ता है विष्णु से, उससे पहले जो संकर्षण बनते हैं, जो चतुर्व्यूह बनते हैं, जो छह प्रकार के अवतार होते हैं, हाँ, इन सारे चीजों का भी मूल कारण नित्यानंद प्रभु है। तो ये कोई साधारण कोई अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है जो नित्यानंद के रूप में वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए नवद्वीप में प्रकट हुए थे, एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए थे ये नित्यानंद। तो आज उस नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन है, आज वे अत्यंत प्रसन्न रहे। वैसे नित्यानंद प्रभु हमेशा प्रसन्न रहे हैं, हमेशा कभी क्रोध नहीं करते हैं, परम आनंद में रहते हैं। भजन में लोचन दास ठाकुर कहते हैं, अक्रोधो परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोधो परमानंद, वो कभी क्रोध नहीं करते हैं और हमेशा परमानंद में रहते हैं। और जो हमेशा परमानंद में रहने वाला व्यक्ति, आज तो उनके जन्मदिन है, तो सोचिए आज कितना वो आनंद में रहेंगे। तो चलिए सब लोग मिलके थोड़ा एक छोटा सा भजन को गाते हैं और उसके बाद उनके दो तीन पास्ट टेंस को हम लोग सुनेंगे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेढ़ाय। अक्रोध अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेढ़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देनो बुलाइया। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम जारे देखे तारे को है दंते तीर्ण दोरी, हमारे किनिया लोह भजे गौर हरि। हमारे के तारे कहे जारे देखे तारे को है दंते तृण दौरी, हमारे किनिया लोहे बजो गौर हरि। जारे देखे तारे कहे दंते तृण दौरी, हमारे गोल नित्यानंद भूमि गरी जाय, सोनार पर्वत जेन गोलाते लोटाय। ये तो गोल नित्यानंद तो बोली नित्यानंद भूमि गरी जाय, सोनार पर्वत जेन बोलाते लोटा। ये तो बोली नित्यानंद हेन प्रभु अवतारे जगति नग मेलो, लोचन बोले से पापी एलो आर बेलो। हे नवतारे जार रति नाग मिलो, हे नवतारे जार रति नाग मिलो, लोचन बोले से पापी एलो आर बेलो। हे नवतारे जार रति नाग मिलो,
परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नेता नगरे बेड़ा आद्रोद परमानंद नित्यानंद राय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद प्रभु की एक चक्र गांव में जन्म हुए थे। ये एक चक्र गांव महाभारत में भी आपको वर्णन मिलेगा। आपको मालूम है पांडवों ने जब उस लाक्षागृह जलने के बाद वो छुप के सुरंग से होते हुए भूमि के रास्ते से होते हुए निकल गए थे और उसके बाद एक चक्र गांव में जाके रुके थे कुछ दिन। उस गांव में कुछ दिन रुकने के बाद एक वहां पे एक पास टाइम हुआ था भीमसेन का, याद है? वहां पे एक बहुत बड़ा सा असुर हुआ करता था, उसका नाम था बकासुर। बकासुर उस गांव के पास हुआ करता था और प्रतिदिन हमेशा उस गांव से एक व्यक्ति बहुत सारा खाना बना के उनके पास जाया करते थे और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को उस बैल को जो बैलगाड़ी में लेते थे और सारा खाना सब खा जाता था। अगर कोई आएगा नहीं तो गांव में घुस के सभी लोगों को खा जाएगा, इसलिए गांव में सब लोग मीटिंग बिठा कर कौन कब जाएगा वो पूरा शेड्यूल बनाया गया था। जैसे भगवान की सेवा के लिए शेड्यूल बनाते वो आ रहा, बकासुर की सेवा के लिए उन गांव में शेड्यूल था एक चक्र गांव में। तो जिनके घर में ये पांडवों ने अपनी माता के साथ रुके हुए थे एक दिन उनका भी बारी आ गया। बेचारा उनका एक ही बेटा था, वो रोने लगे। कुंती माता को पता लगा इस बात, तो माता कुंती बोली कि मेरे 5-5 पुत्र हैं तो मैं मेरे एक पुत्र को भेज देता हूं। तब उन्होंने सारे पुत्रों ने आपस में बोले कि हम जाएंगे करके, मगर सब लोग फिर अंत में डिसाइड किए कि भीमसेन वो जाएंगे। वहां पे ब्राह्मणों के रूप में रह करते थे ये लोग पांडव लोग, और जीवन कैसे जीते थे, जीविका वो भिक्षा मांग मांग के जीविका निर्वाह कर रहे थे। तो उस समय अर्जुन घर में नहीं थे, तो भीम क्या किए, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा खाना लेके और वो निकल पड़े बकासुर के पास। फिर भीमसेन जाके सोचने लगे, बदमाश इतना दिन से हमेशा खा रहा है और इतना सारा पकवान मुझे बहुत दिनों के बाद मिला, क्योंकि जंगल में आने के बाद से खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे तो ज्यादा खाएंगे, और इतना सारा स्वादिष्ट और इतना सारा मिला और वो उसको दो, तो आधे रास्ते में बैठ के सब चट कर गए और फिर वहां पे पहुंचे। इस बीच में अर्जुन घर आए, आके देखते हैं कि भीम नहीं है। वो पूछे भाइयों से और माता से, भीम कहाँ है, भीम भैया किधर है, तो पूरा होल कथा को बताए। तब अर्जुन सोचे कि अकेले भीम भैया चले गए, उनके साथ कोई नहीं गए, कुछ हो जाएगा तो, वो इतना बड़ा खतरनाक राक्षस से सुन रहा हूँ। तो माता कुंती के अनुग्रह पर अर्जुन भी पीछे पीछे दौड़े अपने भीम भैया को मदद करने के लिए। जब भी दौड़े दौड़ते दौड़ते सोचने लगे, भीम भैया तो बहुत देर से निकल गए, मैं पहुंचते पहुंचते कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ यहीं से कुछ करता हूं करके अपने त्रुनीर से वाण निकाले और एक बाण को छोड़े, पाशुपत अस्त्र, वो कुछ सांप होता है वो, तो सांप का अस्त्र वो छोड़े, कौन अर्जुन छोड़े, वो अस्त्र ऐसा है वो तीर निकलेगा वहां जाते जाते वो सांप बन जाएगा और वो उसको मार देगा जिसके ऊपर फेंका गया है। तो ये अस्त्र को छोड़ दिए, फिर बाद में ये चलते गए, मगर ये अस्त्र वहां पहुंचने से पहले ही भीम उस खाना खा के वो बकास भी मार डाले, मार के वापस आ रहे थे। अभी बीच में अर्जुन जी को भेंट हुआ, अर्जुन बोले कि भैया आप सुख कुशल मंगल है, मगर उसका क्या हुआ, बकास ना वो बकासुर तो मरा गया कब का, अब मैं खाना वाना खाया और वो आया मेरे साथ तो फिर मैं मार दिया उसको। तो फिर उनको बोले कि आप घर चलिए, मैं थोड़ा वहां जाके आता हूँ, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक अस्त्र छोड़ा जो कि एक सांप का अस्त्र है, वो सांप वहां पे घूमता रहेगा और वो अनायास बिना कारण के अलग अलग लोगों को परेशान कर सकता है, इसलिए मैं जाकर उनको ठिकाने लगा के आता हूँ। भीम घर आ गए, अर्जुन वहां गए, सचमुच वो राक्षस मर गया था और वो सांप वहां पे घूम रहा था। वो सांप को बोले नित्यानंद अर्जुन बोले कि देखो अभी आप जिस काम के लिए आए वो तो काम हो गया, आप एक काम करो यहाँ पे ये जो वृक्ष है उस वृक्ष की गुफा के अंदर आप रुक जाओ, इधर उधर घूमोगे किसी को भी मारोगे ये सही नहीं है। सांप बोला ये बात तो ठीक है क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं आपके ऑर्डर तो पालन करूंगा, मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो बोले कि आप जो है कभी कभार इस वृक्ष के ओर से इस रास्ते से कोई व्यक्ति कोई जानवर कोई पक्षी अगर चला जाता है आप उसको पकड़ के खा सकते हैं अगर आपके इधर से जाता है तो, मगर आप इस जगह से निकल के कहीं नहीं जाओगे। तो उस दिन से वो सांप उस वृक्ष की कोड़ में रुका हुआ था सदियों से, द्वापर युग से विचार करिए। फिर इस एक चक्र गांव के गांव में ये कलयुग हुआ, भगवान बलराम नित्यानंद के रूप में एक चक्र गांव में हड़ाई पंडित और पद्मावती के गर्भ में घर में प्रकट हुए, फिर उन्होंने बहुत सारे लीलाएं किए। उनका एक भाई भी था, उनका भाई का नाम था बांकर राय, नित्यानंद तो के एक भाई था उनका नाम था बांकर राय। ये दोनों भाई हमेशा फ्रेंड जैसा खेला करते थे। दोनों भाई खेलते खेलते एक दिन उनके अंकल के घर में यानी उनके मामा के घर में जाने के लिए निकल गए, चलते चलते गए। उनके मामा के घर में जाने के लिए दो रास्ता था, एक रास्ता था जो ज्यादा घूम फिर के जा रहा था और एक सीधा मार्ग था। सीधा मार्ग जो था वो जंगल के अंदर में थे, तो दोनों भाई जंगल के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयास किए। तो सभी लोगों ने जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने मना किए, बोले कि आप दोनों बच्चे हो कृपया इस मार्ग से मत जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा सर्पेंट है, सांप है, वो जो भी व्यक्ति जाता है जीव उसको निगल जाता है। बस नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और दोनों भाई चल पड़े। और सचमुच घना जंगल के अंदर जब उस वृक्ष के नजदीक गए, इतना बड़ा सा सांप उस कोड़ से बाहर निकला और बाहर निकल के एकदम खूंखार गर्जन करके उनके और आने लगा। और ये भी दोनों भाई बिना डरे एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं और उस सांप के ओर जा रहे हैं। जब भी नजदीक आया नित्यानंद प्रभु बोले कि स्टॉप, रुको वहां पर, तो सांप रुक गया क्योंकि ये तो सांपों का राजा है, क्योंकि अनंत शेष है, उनको कहां सांप से भय है कि नहीं, तो उनको देख के और रुक गया। बल्कि तुम बिना मतलब का अकारण ही इस मार्ग से जाने वाले सारे जीवों को क्यों परेशान करते हो। तो फिर उन्होंने होल स्टोरी बताया, मेरा मास्टर अर्ज उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ रुको, जो भी इधर से जाता है खाते रहो, इसलिए मैं खा रहा हूँ। बोले कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो युग गया अभी वो सब नहीं चलेगा, आप इस गुफा के अंदर घुसो बाहर मत आना। बोले कि बाहर नहीं आऊंगा खाऊंगा क्या, ना मैं ऐसा अरेंज करूंगा कि यहाँ के आजू बाजू वाले लोग आएंगे आपको पूजा करने के लिए, दूध इत्यादि इसमें डालेंगे और आप वही खा के जीना। तो उनको प्रणाम करके सांप उनके अंदर घुस गया। भगवान नित्यानंद अपने कर्ण का एक कुंडल कान का कुंडल निकाल के उस गुफे के ऊपर रख दिए। वो कुंडल कालांतर में अभी एक बहुत बड़ा सा पत्थर बना हुआ है और वो पूरा गुफा को कवर किया हुआ है, अभी भी है वो। एक चक्र गांव जाते तो उधर को दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद के जो बाल लीलाओं में से एक लीला है कि द्वापर युग के एक सांप को वो उन्होंने वहां पे उनके साथ लीलाएं किए थे। इससे पहले नित्यानंद प्रभु के बाल लीलाएं भी बहुत अत्यंत मधुर है। कुछ दिन उन्होंने रुके अपने गांव में, बहुत दिन तो नहीं रुके, जितना दिन रुके उन्होंने, एक बार ऐसा हुआ हमेशा उन्होंने ड्रामा करने में मग्न रहते थे, बच्चे ड्रामा किया करते थे मालूम है, तो उन्होंने भी ड्रामा करते थे अपने स्कूल के बच्चों को लेके साथीदारों को लेके कई दिनों तक तो ड्रामा करते थे नदी के किनारे। उनके गांव के पास एक नदी था,
एक बार रामायण का ड्रामा कर रहे थे और रामायण का ड्रामा करते समय नित्यानंद प्रभु जो है ना किसका रोल कर रहे थे, लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। और ये ड्रामा में भी रामायण युद्ध का रोल था, वो सीन था, इंद्रजीत के साथ युद्ध हुआ और इंद्रजीत ने जो है ना वो शक्ति मार के अर्जुन इसको लक्ष्मण को लग जाता है, शक्ति भेद होता है और वो बेहोश होके गिर जाते हैं। तो एक लड़का बाण मारा, एक फूल को फेंका, नित्यानंद को लग गया, नित्यानंद को और नित्यानंद को बेहोश हो गए। बाद में सब जाने का समय है, बच्चे लोगों ने नित्यानंद को उठा रहे हैं ना, निताए निताए, और नित्यानंद नहीं उठ रहे, वो बेहोश हो गए थे। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, धीरे धीरे से लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उठाने के लिए प्रयास किए। हड़ाई पंडित आ गए, पद्मावती आ गए और हड़ाई पंडित पद्मावती रोना चालू कर दिए कि मेरे बेटे को क्या हो गया करके। तो एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूछे कि क्या मैटर क्या है, तो पूरा स्टोरी बताया कि हम खेल रहे थे। बोले कि ओ सब समझ गया, अभी हनुमान कौन बना था, इधर आओ। तो एक बच्चा आया, आई एम हनुमान, एक काम कर आप जाओ गंधमार्दन पर्वत को लाने के लिए। फिर बोले कि वो सुसेन वेद कौन बना था, ना मैं, इधर आओ यहाँ बैठो। भगवान राम कौन बना था, आप आओ लक्ष्मण की सर को अपने ऊपर लो। फिर हनुमान को बोले कि आप पर्वत लेके आओ, वो झूठा मूठा पर्वत लेके आता है, फिर वहाँ पे वो सुसेन वेद जाके विशल्यकरणी औषधि को लाता है, फिर हाथ से मत के थोड़ा सा लेके वो नित्यानंद प्रभु का मुंह खोल के उसमें देते हैं और सुसेन वेद कहते हैं ये विशल्यकरणी औषध आपके मुंह में दिया गया है, अभी लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु एकदम से जोर से चिल्लाकर उठते हैं, कहाँ है वो इंद्रजीत, कहाँ है मेरा धनुष, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा उसको। तो इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु बचपन में बहुत ही मधुर मधुर लीलाओं को उन्होंने किए। उनका जो भाई था ना, उनका नाम था बंकिम राय, ये कुछ ही दिन रुके थे। एक दिन ऐसा हुआ, उनके खेत में काम काज चल रहा था, किसकी, ये हड़ाई पंडित की, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो ये जो बंकिम राय है नित्यानंद प्रभु के भाई, वो दोपहर के समय वो देखभाल कर रहे थे। काम काज वालों को बोले कि अरे आप लोग थक गए हो, जाओ खाना वाना खा के आओ इवनिंग को काम करने के लिए। सभी लोग चले गए। जब भी सभी लोग इवनिंग को काम करने के लिए आए, उससे पहले जितने भी खेती का काम था पूरा करके वो जो भी अनाज वगैरह निकालना था वो बड़ा सा ढेर बना के बैठे हुए थे। सब लोग आके आश्चर्य हो गए, एक छोटा सा बच्चा और अकेला पूरा खेत का काम कर लिया। और उन्होंने चिल्ला के हड़ाई पंडित को बुलाए, उनकी मम्मी को बुलाए और इतने गांव के लोग दौड़ के आए, सब लोगों को देख के ये बच्चा उस जो खेती का जो अनाज का ढेर था उसके पीछे छुप गए। सब लोग जाके देखते हैं तो वो नहीं थे, वो बंकिम भाई जो है ना अप्रकट हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे। तब सब लोग रोने धोने किए, पद्मावती रोने लगी, पद्मावती उनकी मम्मी है नित्यानंद प्रभु की, और हड़ाई पंडित उनके पिताजी रोने लगे। तब एक आवाज आया शून्य से कि आप लोगों मेरा उस स्वरूप का फिर से दर्शन नहीं कर सकते हैं, अगले एकादशी में नदी में बह के एक मूर्ति आएगा, एक पुतला, उसको आप रख सकते हो, मैं ही हूं। तब फिर एकादशी के दिन स्वयं नित्यानंद प्रभु जाते हैं उस नदी में, एक विग्रह तैर के आता है, उस विग्रह को लाकर रखते हैं, बंकिम राय, वो मंदिर अभी भी है, छोटा सा मंदिर वहां पे बनाया गया। इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत सारे पास्ट टाइम नित्यानंद को बचपन में किया करते थे। बाद में एक दिन उनके गांव में एक सन्यासी आए, वो सन्यासी एक दिन के लिए उनका गांव में रुके और उस सन्यासी का सेवा उनके पिताजी हड़ाई पंडित ने किया। सेवा करने के बाद दूसरे दिन जब वो उस सन्यासी गांव छोड़ के जा रहे थे, हड़ाई पंडित को बोले कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। हड़ाई पंडित बोले कि मैं तो गृहस्थ हूं और मेरा कर्तव्य है कि जो सन्यासी होते हैं तो उन्हें भिक्षा देना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, तो कृपया आप मांगिए। तो वो सन्यासी कहते हैं कि मुझे आपका बेटा चाहिए जो तीर्थ भ्रमण में मेरे साथ रह सकता है। इस बात को सुन के बहुत बड़ा सा पहाड़ गिरा हो हड़ाई पंडित के ऊपर, क्योंकि पद्मावती और हड़ाई पंडित अत्यंत प्रेम करते थे, एक क्षण भर के लिए भी नित्यानंद को निताई को अपने आंखों से अलग नहीं देख सकते थे। हो तो अभी क्या करें, आके पति पत्नी सुने रोने लगे, दोनों ने विचार किए, पद्मावती को अपना राय उनका मत पूछा कि आपका क्या मत है, पद्मावती एक पतिव्रता थी, उन्होंने बोली कि हे प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तब हराय पंडित उस लीला को याद किए जब विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र को मांगने के लिए दशरथ महाराज जी के पास आए थे। ठीक उतना ही दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र को प्रेम करते थे, मगर विश्वामित्र मुनि ने भगवान रामचंद्र को मांग दिए थे, मगर दशरथ महाराज इनको प्रदान कर दिए थे। उस लीला का स्मरण करते हुए वो नित्यानंद प्रभु को बच्चा छोटे से बच्चे को वो उस सन्यासी के साथ दे देते हैं। वो सन्यासी नित्यानंद प्रभु को लेके अलग 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 तीर्थ स्थानों में पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते एक जगह वहां पर माधवेंद्रपुरीपाद से उनका मुलाकात होता है। नित्यानंद को देख के माधवेंद्रपुरीपाद अत्यंत भावाविहोर होकर दोनों व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। फिर अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आके एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, ऐसा वर्णन है। आगे जाके पंडरपुर में वो जो सन्यासी है वो नित्यानंद प्रभु के शरीर के अंदर समा गए। और वो सन्यासी कौन थे मालूम है? श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर की बड़े भाई विश्वरूप थे। क्योंकि आप सबको मालूम है चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप का जब शादी का प्रस्ताव चल रहा था वो घर छोड़ के भाग गए, जाके वो सन्यासी बन गए। उनका नाम पड़ा था शंकरारण्यपुरी। और उन्होंने आए थे यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए। वैसे तत्व दृष्टि से ये विश्वरूप और ये नित्यानंद प्रभु ये दोनों एक ही व्यक्ति है, वो बलराम स्वयं है, वो विश्वरूप भी और ये भी। इसीलिए वो तीर्थों में उनके साथ साथ रुके और पंडरपुर में नित्यानंद प्रभु के शरीर के अंदर वो समा गए करके कुछ आचार्यों का कहना है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत की और भागवत की कुछ जगहों में सती माता की जो नित्यानंद प्रभु के प्रति का जो वात्सल्य प्रेम है वहां पर लिखते हैं भक्तों ने कि वात्सल्य प्रेम इसीलिए है क्योंकि वो जो विश्व रूप है ये नित्यानंद प्रभु के शरीर के अंदर समा गए हैं, इसीलिए वो उनको अपने पुत्र जैसा लगता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार क्या हुआ मालूम है? सती माता सोई थी, अचानक उसने सपना देखा कि दो छोटे छोटे लड़के गीताई और गौर सुंदर छोटे छोटे वो सती माता की भगवान वाला कमरा अल्टर के अंदर घुस गए, जाके सती माता की भगवान से कृष्ण और बलराम, और जो निताई है वो कृष्ण को पकड़ लिया और जो गौर सुंदर है वो बलराम को पकड़ लिए और बाहर आ गए। और तभी ये कृष्ण और बलराम दोनों जो विग्रह के रूप में थे वो दोनों ये दोनों को चिल्ला रहे, बोल रहे कि तुम दोनों हमारे खाना हमारे ये भोग को क्यों चुरा रहे हो? कौन बोल रहे? कृष्ण बलराम। किसको बोल रहे हैं? ये गौर निताई को। ये कौन देख रहा है? सती माता सपने में देख रही है, ठीक है। तब नित्यानंद क्या बोल रहे हैं? बोले कि देखो तुम लोगों का बदमाशगिरी अभी नहीं चलेगा, क्योंकि जो ग्वाल वालों का जमाना है वो कभी से चला गया, अभी ब्राह्मणों का राज चल रहा है और हम रहे ब्राह्मण अभी हमारा चलेगा, तुम्हारा नहीं। हम देंगे तो तुम लोग खाओगे, नहीं तो भूखे। ये कौन बोल रहे? नित्यानंद प्रभु। तब बलदेव जी को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि देखो तुम बदमाशगिरी मत करो, फिर मैं कान्हा को बोल दूंगा। तुमको मालूम है कृष्ण लीला में कितने सारे असुरों का उन्होंने वध किया था? बलराम बोल रहे हैं वो बोला ना तुम्हारा जमाना गया, अभी द मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन लॉर्ड चैतन्य है, तुम अगर कृष्ण का डर दिखा रहे हो तो मैं डरने वाला हूं नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी जो है वो गौर सुंदर है। तब कृष्ण चिल्ला के बोलते कि देखो तुम दोनों ब्राह्मण ज्यादा नाटक करोगे तो हम बांध देंगे आपको। तब नित्यानंद प्रभु बोलते कि देख बांध के देखाओ दिखाओ। इस प्रकार से दोनों जो ग्रुप है कृष्ण बलराम और गौर निताई उसमें झगड़ा हो रहा है, उसमें इन दोनों गौर निताई ने कृष्ण बलराम की जो है उस छुड़ा के खाना चालू कर दिए और उन लोगों ने इनके हाथ से छीन के खाना चालू कर दिए। खाते खाते नित्यानंद प्रभु चिल्ला के बोलते हैं कि सती माता अब मुझे और जोर से भूख लगा है, राइस लेके आओ। तब सती माता का नींद धड़ाम से खुल जाता है और एकदम से उनके आंखों से आंसू आता है और जाके अपने पुत्र गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछती है कि बेटा मैं इस प्रकार का सपना देखा। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर सा मुस्कान देते हैं और बोलते कि माता, हे माता, असलियत में ये जो सपना है बहुत ही ऑस्पिशियस है, अत्यंत मंगलमय है, परंतु कृपया किसी को मत बताना, बाहर किसी को ये बताना मत। दूसरा और एक बात मुझे क्लियर हो गया अभी, क्योंकि आपके अल्टर में सहमत कृष्ण बलराम है, क्योंकि रोज रोज आपके अल्टर में जो भोग लगाते हो ना वो आधा हो जाता था। मैं सोच रहा था आपकी बहु रानी अल्टर के अंदर घुस के खा जाती थी चोरी चोरी, अभी पता लगा कि सच में कृष्ण बलराम है और वो खा रहे हैं आपका भोग को। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मजाक करते हैं। फिर वो सती माता से पूछते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं निताई को यहाँ पे प्रसाद के लिए आमंत्रित कर सकूं। सती माता बहुत खुश हो जाती है और बोलती कि प्लीज आप उनको लेके आइए। तभी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, नित्यानंद प्रभु गंगा में स्नान करते रहते हैं, जाके चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं निताई आज हमारे घर में भोजन का प्रबंध है, तो कृपया हमारे घर में चलना पड़ेगा, मगर बी केयरफुल, वहां पे कोई मिश्रित नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई बदमाशी नहीं करना चाहिए, आपको बदमाशी नहीं कर सकते हो, सती माता के सामने शांत रहना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आप देखेंगे उनकी लीलाओं में श्रीवास के घर में माननीय देवी के साथ, और यहाँ पे वो बात्सल्य भाव में आके हमेशा कभी भी वो खाएंगे नहीं अपने से, श्रीवास पंडित के पत्नी जो है वो खिलाएगी उनके, मालिनी देवी वो खिलाती है, ऐसे अनेकों बच्चों के साथ खेलेंगे, कभी कभी बच्चों को पकड़ के मारते हैं, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, ऐसे अनेकों मिस्चीफ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मिस्चीफ नहीं करना, तो ठीक है मैं मिस्चीफ नहीं करूंगा। फिर दोनों जाते हैं, सती माता परोसती है दोनों के लिए, दो थाली ला के रखती है किचन से। दूसरी बार वो अन्न लेने के लिए जाती है, उस समय आके देखती है कि दोनों जो गौर और निता है, नित्यानंद और चैतन्य गौरांग, ये दो निमाई और निता, ये दोनों छोटे छोटे बालक में परिवर्तन हो गए, छोटे छोटे बच्चे तो बन गए, उनके चार चार हाथ है, और उसमें जो उनका बेटा है गौर सुंदर, उनके हृदय में उनकी बहू है, उनका बहू उनके हृदय में दिखाई पड़ रही है, और ये दोनों छोटे छोटे भगवान बन गए। और इसको देख के वो राइस की थाली लेते हुए और देखते देखते आश्चर्य होकर सती माता वहीं गिर गए, पूरा राइस चारों तरफ से बिखर गया। उनका सर्वेंट था ईशान, ये ईशान। फिर चैतन्य महाप्रभु आके बोलते हैं कि माता उठिए, आप ऐसा अपने बाह्य चेतना में आइए करके उनको उठाते हैं, ईशान ठाकुर फिर साफ करते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद जो सती माता का जो प्रेम है नित्यानंद प्रभु के प्रति, जो वात्सल्य भाव, वो और त्वरान्वित द्विगुण हो गया है और बढ़ने लग गया है। तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं के हैं। उधर उस सन्यासी के साथ जब ही यात्रा में थे नित्यानंद प्रभु, बचपन से चले गए, पढ़ाई वढ़ाई तो किए नहीं, वापस नहीं आए थे, पंडरपुर में विश्वरूप यानी शंकरानंद स्वामी छोड़ के चले गए, उसके बाद वो वहां से पूरी इत्यादि घूम घूम के वो मथुरा चले गए वृंदावन, और वृंदावन में जाके रुक गए थे नित्यानंद प्रभु, नवद्वीप में नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जो कलयुग में ये अवतार है किसके लिए है ये अवतार, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए है। तो ये संकीर्तन मूवमेंट, ये संकीर्तन आंदोलन जो है अभी तक ये निमाई पंडित ये प्रारंभ नहीं किया था, इसीलिए वो नहीं आए थे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य क्या है, इस संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार करना। अजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ पिस्वंभरौ दिगभरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संकीर्तने कपितरौ पितरौ, रौ मतलब द्विवचन, दो जन पिताजी, और वो कौन है ये दो जन, जिनके हाथ घुटनों तक लंबे लंबे, अजान लंबित भुजौ करुणा अवतारो, ये करुणा अवतार नहीं तारो, दो जन है ये, दोनों निताय
और गौर सुंदर। तो ये नित्यानंद प्रभु ये संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार करने के लिए ये अवतरित हुए थे। तो अभी तक चालू हुआ नहीं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार, इसलिए वो आ नहीं रहे थे। जब मेरे भगवान, जब मेरे प्रभु ये संकीर्तन मूवमेंट प्रारंभ करेंगे तभी मैं नवदीप जाऊंगा और मैं उनको उनके संकीर्तन मूवमेंट में हेल्प करूंगा। इसीलिए वो मथुरा में वृंदावन में रुके हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कंटिन्यूस हरि कीर्तन उधर से अपने पितृसाध करने के बाद वापस आते समय ये संकीर्तन मूवमेंट चालू कर दिए, तब उन्हें पता लगा नित्यानंद प्रभु को कि अब मेरे प्रभु संकीर्तन मूवमेंट प्रारंभ कर दिए, तब आए। फिर आज सबको मालूम है नित्यानंद आते हैं, आके वहाँ पे हमारे इस्कॉन के बाजू में ही मायापुर में एक जगह है, किसका घर है वो नहीं मालूम, नंदन आचार्य के घर है ना इस्कॉन के बाजू में, वहां पे छुप जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बहुत बड़े एक भक्त आए हैं, आप लोग जाके ढूंढो। सभी लोग ढूंढ के आते मिलते नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते हैं भक्तों के साथ नंदन आचार्य के। नंदन आचार्य के घर बहुत ही फेमस है, क्योंकि जिसको भी छुपना रहता है ना उधर ही जाके छुपते हैं। ये नित्यानंद प्रभु वहां छुपे थे, अद्वैत आचार्य भी एक बार वहां छुपे थे, जिनको भी छुपता उधर ही जाके छुपते हैं नंदन आचार्य के घर में। तो वहां पे जाके नंदन आचार्य के घर में फिर नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। उसके बाद मिलने के बाद नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ मेल हो जाता है, संकीर्तन बहुत जोर शोर से चल रहा है। एक बार ऐसा हुआ, श्रीवास पंडित उन्होंने बुलाया नित्यानंद प्रभु को अपने घर में प्रसाद खाने के लिए। वो आए, प्रसाद खाए, भरी रुके हुए थे और भक्तों के साथ बैठे हुए थे सभी लोग, गंगादास इत्यादि, श्रीवास पंडित, नित्यानंद प्रभु, अलग अलग। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, आके सीधा सीधा गए जो श्रीवास पंडित के घर में जो भगवान का जो आसन है, जो अल्टर है, उसके ऊपर जाके भगवान बैठ गए। गौर सुंदर बैठ के नित्यानंद को बोलते हैं, निताय मेरे और देखो, ऐसे बोलते हैं। फिर नित्यानंद को देखते हैं भगवान को, फिर वो कहते हैं कि सभी भक्त इस रूम से बाहर निकल जाओ। सभी भक्त आश्चर्य हो गए, पता नहीं क्या भाव है भगवान का। तो सभी लोगों ने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उस रूम से वो बाहर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। तब नित्यानंद प्रभु देखते देखते श्री चैतन्य महाप्रभु षडभुज रूप का प्रकट किए, और ये षडभुज रूप को बहुत आश्चर्य होके नित्यानंद प्रभु देखते देखते बेहोश हो गए। फिर महाप्रभु उनके अपने होश में लाए। होश में लाने के बाद नित्यानंद प्रभु को ये याद आया कि ये स्वयं भगवान है और मैं स्वयं शंकरस्वयं हूँ, बलदेव हूँ। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रार्थनाएं करते हैं कि आप स्वयं सृष्टि की आदि है, आप ही हमारे स्वामी है, इस प्रकार से अनेकों प्रार्थनाएं करते हैं नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से कई दिन बीता, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास के घर में ही रुकने लगे। एक दिन अचानक चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु आके श्रीवास पंडित को बोले कि श्रीवास इधर आओ, और श्रीवास पंडित को बुला के बोलते हैं कि आपका बुद्धि जो है वो मारी गई है क्या? एक भिखारी जिसका जात पात का कोई ठिकाना नहीं, उसके बारे में किसी को कुछ परिचय नहीं, और आप उसको अपने घर में रखे हुए हो, वो पागल की जैसा व्यवहार करता है, उसका व्यवहार का भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप अपना इज्जत बचाना चाहते हो, अगर आप अपना कुल का इज्जत बचाना चाहते हो, अगर आप अपना घर का इज्जत बचाना चाहते हो, तो ये भिखारी को अपने घर से निकाल दो। कौन बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। किसको? श्रीवास पंडित को। श्रीवास पंडित ये सुन के थोड़ा सा हंसते हैं, कहते हैं क्या भगवान, आप परीक्षा कर रहे हैं, मेरा परीक्षा ले रहे हैं। आपको मालूम है कोई व्यक्ति एक बार भी आपका नाम लेता है, आपका पूजा करता है एक दिन भी, तो मैं उनका सर्वेंट बन जाता हूं। श्रीवास पंडित कहते हैं, एक बार भी अगर कोई आपका भक्ति करता है तो मैं उनका सेवा करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और ये तो निरंतर कभी भी उनके मन से आपका नाम और आपके गुण और लीलाओं को निकाल नहीं है। नित्यानंद जो अवधूत के रूप में रहते हैं भले ही, और ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे तिरस्कार कर सकता हूं भगवान, उतना तो दूर अगर मैंने देखूंगा कभी नित्यानंद के हाथ में दारू का बोतल है और उसने कोई मुसलमान लड़की के साथ शादी कर लिया है, फिर भी उनके प्रति मेरा सम्मान इसी प्रकार रहेगा। तो इस प्रकार से श्रीवास बोले, किसको? चैतन्य महाप्रभु को। इस बात को सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु जय से हरि बोल करके श्रीवास पंडित को अपने गले लगा दिए जोर से। बोले कि श्रीवास, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। असल में संसार में अगर नित्यानंद को सही तरीके से कोई जानता है तो वो आप है, और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ मैं आपको ये वर देता हूं कि ऐसा भी दिन हो सकता है कि लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, मगर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और आपके घर के केवल आपके घर के लोग ही नहीं, आपके घर से रिलेटेड एक कुत्ता भी और एक बिल्ली भी वो भगवत धाम निश्चित जाएगा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हुए। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को आशीर्वाद देते हैं। इससे पता लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में कितना उनके महत्व को बतला रहे हैं। इससे पता है कि हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, श्री गौर प्रेम प्राप्त करना है, तो हमारे लिए श्री नित्यानंद प्रभु कितना नित्यानंद प्रभु की कृपा कितना आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आप वो फेमस पास्ट टाइम जगाई माधाई की जो अत्यंत फेमस लीला है आप उसमें सुनेंगे, जगाई माधाई को चैतन्य महाप्रभु बोल दिए घर घर जाओ, ए निताई हरिदास आप घर घर जाओ, घर घर जाके सब लोगों को दरवाजा ठोक ठोक के बोलो कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का कथा करो, घर घर जाके बोलो। और वो दोनों सेवा करना चालू कर दी, शाम को आके मुझे रिपोर्ट देना कितना प्रचार किया, कितने लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र जप कराया है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद शुरू किए विदेश में, थोड़ा के भक्त बने, इनिशिएशन हुआ उनको थोड़ा कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया, दूसरे शहर में भेज दिया, वहां जाओ और वहां प्रचार करो। कितना किताब गया प्रतिदिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कितना प्रचार हुआ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये मूवमेंट श्रील प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है इसी चैतन्य महाप्रभु के समय से है। उन लोग को भेजे हैं जाओ घर घर, घर घर जाके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो और मुझे आके खबर दो कि कितना प्रचार किया आप लोगों ने। तो इस प्रकार से हरिदास को और नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं। जब इन दोनों को भेजते हैं, हरिदास और नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते गांव में दूर से दो व्यक्ति को देखते हैं। वो दो व्यक्ति थे बहुत अत्यंत पापी, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई माधाई किए नहीं थे। उनका नाम था जगाई माधाई, असलियत में उनका नाम जगाई भाई नहीं था, वो जगाई जो है ना उसका नाम था जगन्नाथ, माधाई जो है ना उसका नाम था माधव। ये बदमाशगिरी करते थे इसीलिए लोग उनको जगाई माधाई के नाम से जानते थे। और ये दोनों ब्राह्मण के लड़के थे, ब्राह्मण कुल के, और संघ के वजह से ऐसा रंग बदल गया, इसलिए संघ जो है ना ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, कैसा संघ कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रंग भी पड़ता है। भले ही हम कंठी तिलक पहने हुए हैं या भले ही उच्च खानदान में जन्म हुए हैं, तो पूछे कि दोनों कौन है तो सब लोग उनके बारे में बताए, नित्यानंद को हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखो अगर हम इन दोनों को भक्त बना दिए ना तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ग्लोरीस है ना गुणगान पूरा फेमस हो जाएगा कि ये हरे कृष्ण मूवमेंट, तो चलो हम उनको भक्त बनाते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हाँ आप एक बार अगर सोच लिए तो व्यक्ति निश्चित रूप से भक्त बनेगा। दोनों मिलके जाते उनको जाके बोलते हैं भाई हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम दोनों बड़े बड़े आंख लाल लाल करके घूर घूर के देखते हैं और देख के तुरंत चिल्लाना चालू करते पकड़ो पकड़ो इसको मारते हैं अभी, और कुछ नहीं पूछे पकड़ो सबसे पहला है ना। तो और ये शब्द सुन के ये दोनों बेचारे दोनों प्रभु है ना नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों भागने लगे अपना जान छुड़ाकर। भागते भागते ये दोनों पछोड़ रहे हैं और वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं, और भागते भागते नित्यानंद प्रभु बोल रहे हरिदास ठाकुर को, हरिदास क्या हमारा जान बच जाएगा ना? हरिदास ठाकुर कहते मुझे क्या पूछ रहे हैं, है ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या मालूम। इस प्रकार से भागते, मगर ऐसा हुआ कि दोनों मोटे मोटे थे इसलिए भाग नहीं पाए, कि दोनों भाग भाग के चले गए गौर सुंदर के घर में। वहां भक्तों की सभा था, बैठे और चैतन्य महाप्रभु पूछे कितने लोगों को प्रचार किया, और बोलते बोलते बताए कि लास्ट में दो जन मिले, नाम जगाई मधाई, बहुत बदमाश है, कौन है ये जगाई मधाई? तब गंगादास और अद्वैत आचार्य, सॉरी गंगादास और श्रीवास, उन्होंने वो जगाई मधाई का पूरा हिस्ट्री बताया महाप्रभु को। तब दोनों ने बोला कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप क्यों इस प्रकार से हमको पूछ रहे हैं? तब चैतन्य महाप्रभु चिल्ला के बोलते हैं क्रोधित होके, हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, दिखाई पड़ेंगे तो गर्दन उड़ा दूंगा उन दोनों का, ऐसे भाव में आके कहते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, ये जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु के घर के बाजू में नदी के घाट में एक दिन रात को रुकते हैं। तो क्या होता है, इन लोगों का जो संकीर्तन है, महाप्रभु और उनके भक्तों का संकीर्तन रात भर सुनते हैं, रात भर फुल पटास दारू पीते पीते पूरा मतवाले हुआ करते थे, और जैसे म्यूजिक सुनते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तभी वो नाचते थे। उनको ये नहीं समझता था क्या है, मगर वो अच्छा गाते हैं म्यूजिक और वो नाच रहे, और नाच रहे थे। सुबह चैतन्य महाप्रभु उस घाट में नहाने के लिए गए, तो दोनों बोलते निमाई पंडित तुम बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, हम खुश हो गए, और ये जो दुर्गा देवी का भजन है बंद कर दिया। अर्थात उनको लग रहा था कि निमाय पंडित दुर्गा देवी का भजन गा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या गा रहे हैं। वो ऐसे पूछ रहे कि निमाय पंडित तूने दुर्गा देवी का जो भजन गा रहा था बंद कर दिया क्या? बहुत अच्छा गा रहा था यार, हम खुश हो गए, बहुत नाचे हम, ऐसे ये हरे कृष्ण महामंत्र के सुने। एक कथा याद आ रहा, हमारे यहाँ पे कुछ भक्त है, एक भक्त बता रहे थे उनके बारे में, वो भी पहले था, अभी तो बहुत अच्छा भक्त बन गए, इनिशिएटेड है, प्रचार करते हैं। वो पहले ऐसे ही फुल पटाख दारू पीते थे, सुबह उठ के उनका ब्रेकफास्ट दारू से हुआ करता था, रात्रि को 2 बजे तक घर लौटते थे। कभी कभी उनकी पत्नी बोलती थी कि एकादशी है मंगल आरती में चलें क्या, तो अभी 2 बजे घर आए, पत्नी को मना नहीं करते थे कभी कभी, और पूरा पिए हुए रहते थे, पूरा फुल नशे में, सोएंगे तो उठ नहीं पाएंगे, ठीक है, और 2-4 पैग मार के वो रह जाते थे, और वैसे ही फुल पी के वो मंगल आरती आते थे मंदिर में, और साधुओं के बीच में घुसेंगे तो वो दुर्गंध आएगा, तो एकदम कोने में पीछे खड़े रहते थे। खास करके शंख ध्वनि उन लोग को बहुत अच्छा लगता था, उनका कहना है, और ऐसे पिए हुए आके वो उधर खड़े रहकर वो सुनते थे मंगल आरती, सुनते शंख ध्वनि, कीर्तन वो भी गाते थे, नाचते थे ऐसे पिया हुआ। और आज उस हरे कृष्णा महामंत्र की कृपा से वो लोग बहुत सुंदर भक्त है, बहुत अच्छा गीता भागवत जानते हैं, और सुंदर प्रचार भी करते हैं अपने मंदिर से जुड़े हुए ऐसे भक्त। ऐसे ये जगाई मधाई रात भर चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट के मुखारविंद से कीर्तन सुने हुए, समझे है कि नहीं? तो ये प्रभाव उनके ऊपर गिरा। उसके बाद एक बार नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते अकेले आ रहे थे, तभी दिख गए ये दोनों, कौन जगाई मधाई। तभी जगाई मधाई जब दिख गए, तब नित्यानंद प्रभु सोचे कि आज अच्छा मौका है, वो बिना डरे उनके पास गए, और उनको जा उनको पास गए आके मिले, तो उन दोनों भाई पूछे कि कौन हो तुम? बोलते कि मैं अवधूत हूँ। फिर वो उनसे बात करते हैं, उनको कहते हैं कृष्ण के नाम लीजिए, ओ भाई कृपया कृष्ण का नाम लो। ये सुनते ही माधाई जो है वहां पे टूटा हुआ एक मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा उठा के नित्यानंद प्रभु के सर पे मारी डाला, तो आप कथा जानते मारे, फिर वो खून बहने लगा, फिर वो हंस रहे थे, फिर डिवोटियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को जाके इन्फॉर्म किए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए क्रोधित होके अपना सुदर्शन को बुलाए, बीच में जगाई ने उनको रोका था इसलिए जगाई बच गए। जैसे सुना कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को दोबारा मारते हुए बताया, चैतन्य महाप्रभु तुरंत आलिंगन कर लिए जगाई को। सोचो श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं तो फिर उस व्यक्ति का क्या कहना, फिर वो कहां पापी रह जाएगा, है कि नहीं? एक हरि नाम, केवल उनका नाम मात्र से करोड़ों जन्मों का पाप अगर खत्म हो जाता है, और स्वयं भगवान उनको अगर आलिंगन करते हैं। माधाई बोलते हैं कि हे भगवान, दोनों मिलके दारू पिए, दोनों मिलके व्यभिचार किए, दोनों मिलके चोरी किए, मारपीट किए, उसका आप उद्धार किया और मैंने क्या किया? बोलते कि आपने यही किया,
कि आपने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उनको क्षमा प्रार्थना करो। अगर वो क्षमा कर देते हैं तब फिर कृष्ण कृपा निश्चित, फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ते हैं। उस लीला से भी ये प्रतिपादित होता है कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होता है तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगा। एक जगह चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त है करके क्लेम कर रहा है और वो नित्यानंद प्रभु के प्रति उसका श्रद्धा नहीं है, वो मेरा प्रिय नहीं है। और कोई व्यक्ति रंच मात्र से भी नित्यानंद प्रभु का भक्ति करता है तो वो मेरा प्रिय बन जाता है। वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की शरीर को स्पर्श करके बहने वाली हवा अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है तो वो व्यक्ति मेरा प्रिय है, ऐसा शब्द को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और भी अनेकों दिव्य दिव्य लीलाओं को चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य लीलामृत में वर्णन करते हैं। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ और दंड भंग लीला इत्यादि और संकीर्तन के पास अनंत लीलाओं को करते हैं। विशेष रूप से यही है कि आज के दिन जो परमानंद कभी भी गुस्सा न करने वाले, चैतन्य महाप्रभु गुस्सा किए मगर नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया गया कि अक्रोध कभी क्रोध नहीं करते, परमानंद ऐसे प्रभु हमेशा परमानंद में रहते हैं। उन्हें आज हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कृपया उनकी जो कृपा दृष्टि अगर क्षण भर के लिए भी अगर हमारे ऊपर पड़े तो हम थोड़ा सा कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु की और श्री प्रभुपाद जी की सेवा कर सके। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।